ये आकाशवाणी है। अब आप फरहत नासी समाचार सुनिए। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुश फिल्मोर आज सुबह स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर धरती पर वापस आ गए हैं। उनके स्पेसएक्स कैप्सूल ने पैराशूट से मैक्सिको की खाड़ी के लिए उड़ान भरी। फ्लोरिडा पेनहैंडल में तलहासी के तट पर स्पेस लैंडडाउन हुआ, जिससे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की 9 महीने की कठिन परीक्षा समाप्त हो गई। विलमोर और विलियम्स पिछले साल जून से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे। दोनों ने अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए, जो अनुमान से 278 दिन अधिक रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की सुनीता विलियम्स सहित नासा के क्रू 9 की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और क्रू में शामिल अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने मानव धीरज और दृढ़ता के इतिहास को दोहराया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुनीता की वापसी को गर्व का क्षण बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि भारत की बेटी की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए पूरा विश्व एक साथ आया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत में पूरी कर ली है। व्हाइट हाउस यूक्रेन के साथ 30 दिन के युद्ध विराम पर जोर दे रहा है, जिसका उद्देश्य रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करना है। व्हाइट हाउस और क्रेमलिन ने बातचीत के बारे में तत्काल कोई विवरण नहीं दिया है, लेकिन दोनों ने बातचीत समाप्त होने की पुष्टि की है। गजा पर हुए नए इजरायली हवाई हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 400 हो गई है। हमास द्वारा संचालित फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह हमला इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम वार्ता के विफल होने के बाद हुआ है। इजरायली सेना ने कहा है कि वह युद्ध विराम को और बढ़ाने की बातचीत की विफलता के बाद हवाई हमले किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज भी राज्यसभा में जारी रहेगी। चर्चा के अंत में विभागीय मंत्री जेपी नड्डा सदन में जवाब देंगे। इससे पहले कल डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार को दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेल को आधुनिक, कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि रेलवे की वित्तीय स्थिति अच्छी है और सरकार इसे और बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में कल रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल के साथ बैठक की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने नेपाल, थाईलैंड, लक्जमबर्ग, लातविया और मालदीव सहित विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने स्वीकार किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख का विरोध करना उनकी गलती थी। कल नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में उन्होंने कहा कि 2022 में भारत की तटस्थ स्थिति की आलोचना करने के लिए उन्हें अफसोस है। श्री थरूर ने रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने पर भारत के रुख की आलोचना की और आक्रमण की निंदा करने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कई जगहों पर एक साथ छापे मारे। ये छापे आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के मामले से जुड़े हैं। इन छापों का उद्देश्य सीमा पार नेटवर्क का पता लगाना और क्षेत्र में घुसपैठ को रोकना है। एनआईए ने इससे पहले भी आतंकवाद से जुड़े अन्य मामलों में छापे मारे थे। ब्यूरो की प्रतीक्षा है। नागपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति अब नियंत्रण में है। जिला पुलिस आयुक्त डॉ रविन्द्र सिंघल ने बताया कि सोमवार रात को हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 5 मामले दर्ज किए गए हैं और 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिला प्रशासन आगजनी और पथराव के कारण संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को नौकरी के बदले जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें ईडी के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है। कल उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एजेंसी की जांच टीम के सामने पेश हुए। कबड्डी विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत को स्कॉटलैंड की टीम ने रोमांचक मुकाबले में 64-64 से ड्रॉ पर रोक दिया। भारत का अगला मुकाबला हांगकांग चीन से होगा, जबकि आज स्कॉटलैंड और इटली आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।